المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ تیسری بار اس صورت میں دنیا کی زیب و زینت کا ذکر ہے۔ پہلے آیت 7 میں پڑھ چکے، ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ پھر آیت 28 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ کہیں آپ لوگوں کی طرح دنیا کی زینت کے تو طلبگار نہیں ہیں۔ اور یہاں آپ تیسری بار یہ بات آ گئی، سب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ وقتی ہے، آزی ہے، سب رشتے ناطے تعلق داریاں چاروں ناچار صرف اس چند دن کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ آج آنکھ بند ہوئی، سب رشتے ٹوٹ گئے، سب تعلق ختم، اور انسان اللہ کی عدالت میں تن تنہا پیش کیا جائے گا۔ اگلی آیتوں میں پڑھیں گے، سورہ مریم میں بھی آتا ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ وہاں نہ باپ کوئی کام کرے گا، نہ کسی کے پاس نہیں آئے گا، سب تنہا تنہا اللہ کے پاس آئیں گے۔ سورہ مریم آیت 95 ہے۔ کریں کیا پھر؟ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ، یہ ہے باقی رہنے والی نیکیاں۔ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا، بہتر ہے تیرے رب نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ یعنی اوپر بات ہوئی مال اولاد کی، اور دو لفظ جوڑ دیں مال اور اولاد، تو مال اور اولاد کا فتنہ آج ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ عروج پہ دکھتا ہے، شادی کے موقع پہ سب سے زیادہ ہمارا مال اور ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ بنتی ہے۔ شادیوں پہ 6-6 مہینے، 1-1 سال شادیوں کی تیاریاں ہوتی ہیں، کتنی نمازیں فوت ہوتی ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شادی کا دن جب آتا ہے تو اس دن تو دلہن کو بھی نمازیں معاف ہیں، اور ہم اپنی زندگی کا اگر رخ دیکھیں تو یہی گزر جاتا ہے۔ کہاں گزرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چند دن کی زندگی کو باقیات الصالحات بنا لو۔ گویا کہ سائے میں سبق دیا گیا کہ مال اولاد کو ایسی جگہ پہ لگاؤ کہ جو تمہارے لیے باقی رہنے والی نیکیاں بنے۔ دو لفظ یہاں بڑے غور سے دیکھنے والے، پہلی بات کہہ رہی ثوابن اور دوسری ہے خیرن عملا۔ ثواب لفظ تو مجھے پتا ہے آپ سب کو سمجھ آ گیا کہ باقیات الصالحات بنا لو گے تو ثواب ہوگا، باقی رہنے والی نیکیاں۔ اور اگر لفظ آپ باقیات دیکھیں نا تو باقیاتن کی جمع ہے، مؤنث ہے، صالحات جو ہے صالحات ان کی جمع، وہ چیزیں وہ نیکیاں جو باقی رہیں گی۔ گویا کہ زندگی جانے کے فنا ہونے والی زندگی سے جو تم لے کے جا سکتے ہو وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اب یہ کون سی نیکیاں، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ہم اس کو دونوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ اگر احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو باقیات الصالحات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت روایات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ یہ سب وہی کلمات ہیں جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح کچھ اور وضف کچھ کلمات بھی احادیث میں ملے ہیں جس کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں۔ مسند احمد میں کہ حضرت عثمان کے غلام کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ایک مرتبہ ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں مؤذن نے اذان دی، آپ نے پانی منگایا، ایک برتن میں قریب 3 پاؤں کے پانی آیا، یعنی 3 پاؤں یعنی 1 کلو سے کم پانی آیا، آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وضو کرتے تھے فرمایا اسی طرح تم وضو کرو جیسا وضو میں نے کیا، پھر ظہر کی نماز ادا کرے تو صبح سے لے کے ظہر تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر عصر میں اسی طرح نماز پڑھے تو ظہر سے عصر اور مغرب پڑھی تو عصر سے مغرب گناہ معاف ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھی تو مغرب سے عشاء کے گناہ معاف، صبح اٹھا در پڑی تو عشاء سے لے کر صبح گناہ معاف ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ نیکیاں جو برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ قرآن میں آتا کیف باللتی یا احسن، لوگوں نے پوچھا یہ تو نیکیاں، یعنی یہ تو اپنے نیکیاں کیے ہیں، عثمان یہ بتائیے کہ باقیات الصالحات کیا ہیں، یعنی نمازیں پڑھ لی یہ تو نیکیاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ इसी तरह से वाक्यातुस सालेहात में कुछ और कलिमात भी आते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को अगर आप जमा करें तो बाकी रहने नेकियां, एक तो है हमारे अज़कार और दूसरी है हमारी नेकियां जो हम अपनी अपनी औलाद के जरिए और अपने माल के जरिए कमाते हैं। आज हम सब देखें तीन चीज़ें आपके पास अगर इस एक आयत की रोशनी में, और वो क्या है? माल, औलाद और अज़कार। ये तीन काम करें इंसान के लिए आसान हो जाए तो बाकी सारे मामले आसान। एक रिवायत सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत है। सल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज की गई तो मैंने आसमान पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा। फिर आपने जिब्राइल से पूछा, ये आपके साथ कौन लोग हैं? जिब्राइल ने कहा कि ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने मुझे मरहबा कहा और खुश आमदेद कहा। फरमाया, आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए कि वो जन्नत में अपने लिए बागात लगाएं। इसकी मट्टी पाक है, इसकी ज़मीन कुशादा है। मैंने पूछा, वहाँ बाग लगाने की क्या सूरत है, यानी किस चीज़ से बाग लगते हैं? तो फरमाया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, कसरत से। कितनी आसान नेकी है, जुबान तो अक्सर खाली है, और यकीन करें बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। अक्सर सोचती हूँ कि बोल बोल के हम थक नहीं जाते, बात बस सुन सुन के लोग थक जाते हैं हमारी बातें, हम नहीं थकते। तो जिक्र अज़कार की आदत डालना जो होता है, ये इंसान को बहुत सारी और चीज़ों से भी बचाती है। अब बात है पिछले टॉपिक पर लेकर लें, और वो क्या है कि हम अपनी औलाद और अपने माल को कैसे बाकी रहने लिए नेकियां बनाएं। पहले तो ये बताऊंगी कि ये आयत फेवरेट आयत है मेरी। जब भी कभी हम बच्चों का कोर्स शुरू करते हैं, अगर आप किसी भी कोर्स इंट्रो लेक्चर सुनेंगे तो मोस्टली मैं यही आयतें लेती हूँ। माएँ साथ थी उस वक्त क्लास में और हम उनको ये मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि बच्चों को दीन सिखाने का क्या फ़ायदा है। तो ये आयत बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं कि ये बच्चे आपकी नेमत है, ये माल आपका है, ये तो आपकी दुनिया तक है, आप अपने बाद के लिए इसको कैसे इन्वेस्ट करें कि इन दोनों को अल्लाह के दीन से जोड़ें। जितना अपने बच्चों को शऊर देंगे उतना ये बाद में आपके लिए दुआएं करेंगे। आप में से किसी ने सवाल किया था कि पिछली आयतों को पढ़ने के बाद कि जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे ग्रेड्स आए, तो फिर इसकी क्या हैसियत है? ये सवाल था आपका, यानी कहना चाहिए या कहना चाहिए? आप सवाल दोबारा दोहराएं।
जब हम ये कहते हैं तो हमें इंसेंटिव क्या देना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम ये कहते हैं ना कि अच्छी जॉब करोगे।
जी, ये अहम टॉपिक है। देखिए, जब हम ये मौजू सुनते हैं ना तो अफराद और तफरीद का शिकार होते हैं। क्या हमारे बच्चे ना पढ़े, क्या हमारे बच्चे अच्छे ग्रेड्स ना ले, मेहनत ना करें, क्या करें? मैंने इसका जवाब कल परसों भी किसी को दिया, शायद किसी क्लास में रोनो का। देखिए कि रहेंगे, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। नंबर एक ये है कि इसको मकसद नहीं बनाना। आपको अपने बच्चे को बचपन से इस चीज का ख्याल देना कि ये दुनिया का पढ़ना तुम्हारा इस सोच के से होगा कि तुम जिस फील्ड में जाओगे हाँ मुसलमान बन के जाओगे। डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टरों में जाके इस्लाम उसका दिखेगा, और वहाँ की तबलीग करने का मौका तो बहुत देर से आता है, पहले तो अपना अमल ही बड़ा खूबसूरत होता है। अगर एक मुसलमान रियल मुस्लिम हो, अली शेर वाला, शेर की खाल वाला मुसलमान नहीं, तो यकीन करें कि अगर आपके बच्चे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, ये उस बीज की तरह साबित होंगे कि वो बीज जहाँ पड़ेगा वहाँ इस्लाम का दरख्त उगेगा, उनको मुँह से नहीं पड़ेगा। और असली और नकली का यही फ़र्क होता है। असली बीज वो होता है खुद ही उग जाता है, मौका मुनासिब हो जैसा भी हो, उसको ज़्यादा टेक केयर नहीं करनी पड़ती। आर्टिफिशियल बीज होते हैं ना, उस बड़ी टेक केयर करनी पड़ती है। कभी आप जंगलों को देखे, कौन जाके वहाँ बीज डालता है? और मैं अक्सर जब वॉक करती थी नॉर्वे तो मैं देखती थी हर साल इस मौसम में ये बीज क्यों निकल आते, कौन डालता है? बाद में पता चला कि जब पौधा ख़त्म होता है खिजा दिए तो बीज उसी ज़मीन में दब जाता है, फिर माँ के लिए ठंडा करके बीज बर्फ डाल दी जाती है। जब मौसम मुवाफिक होता है, ज़रा मौसम गर्म हुआ तो खुद वो ज़मीन से बीज उग जाते हैं। इस तरह हमारे बच्चे भी इस्लाम बीज बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ना तो बच्चों इस सोच से पढ़ाइए कि आप उनको कहें कि तुम्हें जॉब मिलेगी, ये तो बहुत बड़ा शिर्क है। यही तुम्हारा मौजू पीछे से चल रहा है कि आप ये कहने के लिए कि पैसे कैसे कमाओगे, आपने अपने बच्चे की तौहीद को खत्म कर दिया। घर बैठ के सुकून से मेरे इन जुमलों पर गौर कीजिएगा, अभी नहीं समझ आएंगे आपको, क्योंकि हम इतनी कसरत से ये बात कहते सुनते और बोलते हैं कि अब इसके खिलाफ बात सुनना हमें थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन इस सोच से कि तुम्हारे पढ़ने का ताल्लुक तुम्हारे रिस्क से, ये दुरुस्त सोच नहीं है। बच्चों को पढ़ाइए तहजीब सिखाने के लिए, मैथ सिखाने के लिए, इंग्लिश इसलिए सीखें कि इंग्लिश में जाके इंट्रैक्शन कर सकें दूसरी कम्युनिटीज के साथ, मैथमेटिक्स इसलिए सिखाइए कि ज़कात का हिसाब दे सकें, रख सकें, अकाउंटिंग सिखाइए ताकि वो चांद की तारीखों का हिसाब करें और वो अपनी नेकियों को बुराइयों को जमा कर सकें। आप अपने बच्चों को ज्योग्राफी सिखाएं ताकि उसी के अंदर मार्क करते जाएं कि दुनिया के किन हिस्सों तक इस्लाम पहुंच गया, किस हद तक नहीं जाया। लेकिन मसला पता क्या कि माँ को भी नहीं पता। मेरी बात सिर्फ माँ को समझ आ रही होगी जिसको ये बात समझ आ गई है कि जिंदगी का मकसद क्या है। आप देखिए कि आप अपने बच्चे को उस नमाज के लिए नहीं उठाते, स्कूल के लिए उठाते हैं। आपने वही शिर्क सिखा दिया जो उसका शिर्क था कि अना मैं अपनी तौर पे हूँ। माल और औलाद जितना अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से अल्लाह के रस्तों में लगाते जाएंगे उतनी आंखें ठंडी होंगी। बात वाजे, मकसद नहीं बनाना। इस सर्कल में अगर घूम फिर रहे हैं तो इसमें रहकर उनकी नमाज भी ना पूरी हो। आप देखिए कि 16 साल का बच्चा और कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ, 18 साल की बच्ची उसको नमाज नहीं आती, 20 साल की बच्ची नमाज पढ़ती है लेकिन उसको उसका तर्जमा नहीं आता। क्या ये जुर्म नहीं? आप इसको जुर्म नहीं समझते? हमारे बच्चों को अभी तक नमाज का तर्जमा नहीं आता और वो वक्त पे पढ़ते नहीं, शौक से नहीं उठता फजर पे। क्या ये जुर्म नहीं? खुद को झंझोड़ के अगर आईने में खड़े करके अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसव्वुर में सोचें और अपने आप को उनकी उम्मत का एक फर्द कहते हुए अपने बच्चों की तरबियत और उनकी तरजीहात को सर करके देखें। एक दिन आपका बच्चा स्कूल ना जाए तो जो ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है, क्या वही उसकी नमाज छोड़ पे होता है? और नमाज बरए नमाज नहीं, नमाज बरए नमाज रूह स्पिरिट। तो जरूरत है इस बात की कि हम अपनी जिंदगियों के स्टाइल और फिक्र करें। इस तरीका क्या होगा? देखिए लंबी बात है, इस वक्त मौका नहीं है और जरूरत ही है, लेकिन मैंने इस मौजू में आगे पीछे काफी जगह बात की है कि हम अपने बच्चों को पहले तो एक जिसका कहते हैं ना कैपिटल समझना पड़ेगा। कैपिटल समझते हैं क्या होता है? जिसके साथ कारोबार शुरू हो जाता है, हम अपने माल और अपनी औलाद के हासिल होने पे उसको एक कैपिटल ऑफ इस्लाम समझेंगे ना, तो सारी बातें वहीं से ठीक हो जाएंगी। आपके घर बच्चा पैदा हुआ, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा में एक फर्द का इजाफा हो गया, अल्लाह ने आपको माल दिया। आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक मुसलमान को माल दिया। बस ये तरजीहात मुरतब करते जाएंगे उसके बाद सारे काम आसान हो जाएंगे। और अगर ये नहीं, जिस पहिए में सब घूम रहे हैं घूमते रहे। मैं एक ये भी आपको बात बता दूं, एक तरफ कर दीजिए इस्लाम को, दीन को निकाल दें। क्या ख्याल है कि जिस पहिए में इस वक्त नस्लें घूम रही हैं, क्या इस पहिए में बच्चे खुश हैं? मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम, दुनिया भी नहीं बनती। दुनिया कब बनेगी? जब दीन बनेगा। आज भी वही बच्चे अपने माँ बाप की दुआएं लेने वाले किस तरह से इन चीजों में आते हैं कि जिनको दीन से जोड़ा होता है। तो आप और मैं दुनिया की हकीकत समझें। ये पीछे से एक चेंज चल रही है, अगर आप देखें इन्ना मसल हो जाते दुनिया से। सबसे पहले नंबर एक करने का काम, अपने दिल में दुनिया की असल जगह रखें। दुनिया क्या है, कैसी है, उसका प्रेषण प्रपोषण ठीक करें। माँ और बाप, आप अपने आप पर ले लीजिए, आपके ऊपर। पहले आपको इस दुनिया की अहमियत समझ आई, ये कितनी अहम है, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, वेरी अर्जेंट, इसकी स्टेटस रखें। फिर आप खुद इस दुनिया के लिए वो कोशिश करें जितनी इसकी कोशिश करने की जरूरत है। खामोश आंखों से बच्चा आपको देख रहा है दिन रात भागते हुए। जो बच्चा अपनी जिंदगी के शुरू के 4-5 साल में सुबह शाम माँ और बाप को मशीन बनता देखता और इस दुनिया के पीछे भागता देखता है, आप उसको फिर लेक्चर्स और दरसों और नसीहतों से नहीं दुनिया की अहमियत कम कर सकते। वो आपके अमल से देख रहा है, वो कहेगा मुझे पता है दुनिया का एक जीनियस मर्द और वो मेरा बाप है, और दुनिया की एक जीनियस औरत वो मेरी माँ है, और मैंने उनको दिन रात दुनिया के पीछे भागते देखा है। अम्मी अब्बू की लड़ाई भी जब होती थी पैसों पे होती थी, और अब्बू मेहनत करते थे तो पैसों के लिए करते थे, और अम्मी भी जब भी खर्च करती थी तो पैसों की बात होती थी। गैर महसूस तरीके से उनकी तरबियत हो रही है। अब 7-8 साल पे आप उनको नमाज कहें, आप दीन कहें, ये और बात है। असल बात यह है कि जिस दिन आपको मुझे दुनिया की असल हकीकत समझ आ गई, और दुनिया की हकीकत क्या है, 4 दिन की जिंदगी है। हदीस में आता है कि जनाजे के साथ 3 चीजें जाती हैं, एक इंसान का माल, कितना कुछ आता है साथ, चारपाई, कफन, और उसके अंदर आप देखिए कि इंसान के साथ क्या जाएगा, कुछ कब्र खोदने के आले, कुछ चीजें चली गई ना। कब्र में जब दफन करके आते हैं चारपाई वापस आ जाती है, आ जाती है, टूल्स वापस आ जाते हैं, साथ वही 2 गज कफन का टुकड़ा और जो भी चंद चीजें थी वो गई। कुछ रिश्तेदार जाते हैं अपने प्यारे, खुद जो जितना करीबी है ना उतनी ज्यादा मट्टी खोदता है और उतनी मट्टी डालता है। कहते हैं एक मुट्ठी आप भी डाल दीजिए, आज सारी मोहब्बतों का ये सिला इनको दे दें कि आपके ऊपर मट्टी डाल के जाए। कहाँ जाते हैं हम? आप देखिए अलमारी भरी पड़ी है ब्रांडेड कपड़ों और जूतों और मैचिंग पर्सों से। आपको क्या पहना के भेजेंगे दुनिया से? कफन, कफन का कोई ब्रांड नहीं है, कफन पे कोई मोती नहीं है, कफन पे कोई सितारे नहीं। क्या ये हकीकत मेरे और आपसे छुपी हुई है? आज एक कफन अपने वार्डरोब में लटका दे। मुझे एक बच्ची की बात याद आ गई कि मैंने अपना और अपनी माँ का कफन उसी दिन खरीद लिया था जिससे मेरे बाप की डेथ हुई थी। उससे मुझे यकीन आ गया था कि अब मैंने भी मरना है, मेरी माँ ने मरना है, क्योंकि मेरा प्यारा बाप मर गया। चलिए घंटों वॉशरूम में लगते थे, क्या कुछ अंदर जाके एक्टिविटी थी, कुरेदते खोदते रहते हैं, अपने आप को सजाते रहते हैं। गुसल कहाँ जाके दिलवाया जाएगा हमें लकड़ी के तख्ते पे? और ये हमारे बाथरूमों में तो जान नहीं देंगे कि मैयत निकलनी नहीं है। फिर और कोई खुला बाथरूम ना हुआ तो चादरें तान के खुली जगह पे कहीं दफनाएंगे। कोई वहाँ जिकूजी नहीं है, और वहाँ कोई फाउंटेन नहीं है, और टेम्परेचर सेटिंग नहीं है, और वहाँ से भी म्यूजिक की आवाज़ें नहीं आ रही। किस गाड़ी में बैठता था कोई चमकती हुई, आगे स्टार लगा हो या उसके ऊपर कोई झंडे लगे हो, सब गाड़ियां घर के पोर्च में हैं और आपके लिए एक गाड़ी आएगी। ये है इस दुनिया की हकीकत। और औलाद अगर जाती है तो कितनों की जाती है साथ? आप देखिए कि आज जितना हमने अपने बच्चों को दुनिया की चीजों में डाला, और इस वक्त भी आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे कि जिनकी औलादें बाहर पढ़ने गई हुई हैं दूसरे मुल्कों में, शहरों में। चले हम तो पहले ही बाहर हैं, लेकिन हम बाहर वालों ने भी किसी दूसरे ही बाहर भेजा था, अपने शहर में तो कम ही बच्चे होते हैं। और अक्सर बच्चे जिनको माँ बाप ने इतनी मेहनतों से बाहर पढ़ने भेजा होता है, वो अपने माँ बाप का मुंह दिखने से महरूम रहते हैं। सच है कि झूठ? और वो कब आएंगे आपकी मैयत की खबर सुन के? जब आप छुट्टियों में मरेंगे, कि क्या गलत वक्त पे दुनिया से चले गए, ये क्रिसमस की छुट्टियों में आप मरते हैं या ईस्टर पे होते हैं, सॉरी हम नहीं आ सकते, आप दफना दें। वो आएंगे बाद में अपने हिसाब से, जब उनको जायदाद बांटनी है और कुछ चीजें लेनी है। बहुत कम माँ बाप है जिनकी औलादें उनको गुस्ल देती हैं। और आपको पता है कि खुशकिस्मत है वो बंदा जिसके अपने बच्चे, उसके अपने घर वाले उसको नहलाएं धोहनाएं, उसको कफनाएं और उसके नाजा पढ़े। मसनून अमल यह है कि अपने करीबियों से गुस्ल दिलवाया जाए। हजरत फातिमा को हजरत अली ने गुस्ल दिया, क्योंकि जो करीबी को होगा उसको दर्द होगा, दूसरे को तो नहीं होगा दर्द, वो जो मुझे अपना हो सकता है अपने का। फिर हम उस वक्त भागते हैं, वो नहलाने वाली नहीं आई, किधर बोले उनको, वो क्या करेंगी? उस वक्त तो कर देंगी, बाद में चुपके चुपके अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, आपकी माँ के सबको राज सुनाती फिरेंगी कि लाश ऐसी थी तो मैं ऐसी हो गई, तो बाद में ऐसा हो गया। जिस दिन मुझे यकीन आएगा ना कि मैंने मरना है, एक लम्हे के लिए सोचे आज के लिए क्या है? आप उस डेट को लिख के खुद से पूछे, जिस तरह आज का दिन डेट मेरे सामने है ना, इस तरह मेरी मौत की डेट फिक्स हो चुकी है। आपने ये लफ्ज सुना होगा बहुत बार कि डेट फिक्स हो गई है। क्या मतलब है उसका? शादी की डेट फिक्स हो गई है। हॉल पहले खरीदते हैं, ढूंढते हैं, फिर डेट फिक्स करते हैं, क्योंकि उनसे पूछ के डेट रखनी पड़ती है आजकल, और अक्सर 6-6 महीने की डेट। और आपने देखा जब डेट फिक्स हो जाती है ना तो तैयारियां भी तेज हो जाती हैं, और फिर वो वक्त आ ही जाता है, जितनी मर्जी लंबी डेट हो आ ही जाती है। तो क्या मेरी और आपकी डेट फिक्स हो चुकी है? आज खुद को यकीन दिलाएं इस बात का कि मेरी मौत की डेट फिक्स हो चुकी है, फिर आपकी जिंदगी का बदल जाएगा। मौत के लिए जीना और जिंदगी के लिए जीना, ये दो मुख्तलिफ रवैये हैं। मसला क्या हमारा, ये बात चल रही है औलाद की, पढ़ाइयों की, कमाइयों की, ये हमें समझ ही नहीं आएगी जब तक हम मौत के लिए नहीं जिएंगे। हम आज जिंदगी के लिए जी रहे हैं। हमारा जिस्म हमें बोल बोल बता रहा है कि तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो। गालों की गुलाबी गई, झुर्रियां पड़ गई, घुटने खत्म, खाना हजम नहीं, एक एक करके दांत टूटते हैं। किस्तों में दुनिया की रौनकें मिलती हैं और किस्तों में चली जाती हैं। और हमारा हाल क्या है कि बेटियों की रुखसती है, उनकी असल रुखसतियों को भूले हुए हैं। कितना गम है अपनी बेटी की रुखसती का? क्या सच्ची बताए अपनी बेटियों की असल रुखसत गम है? कहते नहीं, ये इनका अपना मामला, इनको खुद पता है, ये खुद पढ़ें, ये खुद सीखें, इनको हम फोर्स नहीं करते। ये भी आज के दौर एक बहुत बड़ा ताबूत है कि हम अपने बच्चों को फोर्स नहीं करते। ये खौफ ज़दा होने की अलामत है कि कैसे हो सकता है जिन अपने पालन पोसा आप उनको आग में जाता देखें और आप उनको फोर्स करें। किस तरह किसान की जिंदगी एक से एक, एक फसल कटती है और दूसरी आ जाती है। एक सीख का कॉल सुनना बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग कहते हैं कि याद रख, जब तुझे कोई चीज मिले, तुझसे पहले कोई इसका मालिक था और तेरे बाद भी कोई इसका मालिक होगा। तेरे पास तो ये चीज सिर्फ या सुबह के लिए है या शाम के लिए, बस एक लुकमा तेरा है, बाकी सब आखरत का। तो इस दुनिया में रोजा रख और आखरत में इफ्तार कर। आज हम अपनी जिंदगी को भूले हुए, इसलिए हमारी हर चीज उलट पलटी है, अपसाइड डाउन जिंदगी आज मेरी और आपकी। ये दुनिया एक बुलबुले की मानिंद है, कायनात मुकाबले में हमारी जिंदगी कितनी मुख्तसर है। सूरज चांद सारे इतने साल से जी रहे हैं और हम चंद साल जी के दुनिया से आते हैं। इस बात की खबर है कि अगली दुनिया में फिर जिंदगी जाएगी, कम से कम सोच इतने तो तुम भी जी के हो, मरना तो नहीं है। तो यकीन इस दुनिया और जिंदगी और मौत में उतना ही फर्क है जितना अजान और जमात बीच का फर्क है। आते हैं तो अजान दी जाती है और दुनिया से जाते हैं तो जमात से हमारा जनाजा पढ़ाया जाए। हाँ, बीच में कुछ खुतबे की मौका मिल, निकाह का हो जाता है, कब वो भी नहीं होता। तो इस बात की कमी है और इसके लिए हमें खुद ने आपको बदलना पड़ेगा। जब तक हम अच्छे नहीं बनेंगे, हमें अच्छे पैदा करने नहीं आएंगे। इब्ने दिया रहमहुल्ला को जेल जब डाल दिया गया तो लगे इन नफे दुनिया जन्नत, जन्नत इस दुनिया में है, मलम यद खुदा लम यद खुल जन्नत आखिरा, कि दुनिया में जन्नत रखी हुई है, जो इस दुनिया की जन्नत में नहीं जाए आखरत में भी नहीं जाएगा। इसलिए हम सब इसकी फिक्र करें। बहुत ही खूबसूरत दुआ है, मैंने इसे तो खुद भी पढ़ती हूँ, शायद आपको कहलवाई है कि नहीं, कहलवाती हूँ। इन की रोशनी में तफसीर आती है। फरमाया रसूलुल्लाह सुना है कि जब सोने नदी के जमा करने में जाएं, इस वक्त इन कलिमात हसरत पढ़ना। आप भी सब पढ़े, मैं आपको इसका तर्जुमा कराऊंगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका सुबात फिल रि वल अजीमत वल रुश्द व अस'अलुका शुक्र बेमतिका नेमतिका व अस'अलुका हुस्ना इबादतिका व अस'अलुका कल्बन सलीमन व अस'अलुका लिसानन सादिकन अस'अलुका मिन गैरी मा तअलमु अऊज़ु बिका मिन शर्री ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت العليم الغيوب اب اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اے اللہ میں تجھ سے اپنے کام کی ثابت قدمی اور نیکی کے کام کا پورا قصد اور تیری نعمتوں شکر گزاری کی توفیق طلب کرتا ہوں اور تجھ دعا ہے کہ تو سلامتی والا دل اور سچ زبان عطا فرما تیرے علم میں جو بھلائی ہے میں اس کو چاہتا ہوں اور تیرے علم میں جو برائی ہے اس سے تیرے نہ چاہتا ہوں پروردگار برائی سے میری توبہ ہے جو تیرے علم میں بے شک غیب دان صرف تو ہی ہے تو ذرا اس بات کی کہ ہم اپنی ترجیح بدلیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات باقی رہنے والی کیا کریں آسمان تعالیٰ کی خبر ہمیں دیتا ہے اور یہ جو لفظ ہے نا خن عملہ ترجمہ بہت لوگوں کو کم سمجھ آتا ہے مجھے بھی بہت عرصہ سمجھ آیا اس کا ترجمہ دیکھیں کہ باقی رہنے والی نیکیاں بہتر تیرے رب کے پاس ثواباً ثواب کے اعتبار سے اور خیر اللہ کہ وہ جن کی امید ہے یعنی اس کا مفہوم کیا ہے جس چیز انسان امید رکھے وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہونی چاہیے یعنی ہماری ترجیحات کی جا رہی ہیں ورنہ ہوگا کیا اب اگلی آیتوں میں مضمون جائے گا اس کو ختم سمجھیے 40 اور جس دن جلائیں گے پہاڑوں سوچیے نسیر وہی لفظ سارا یسیر و سیرن سیر پہاڑ چل گئیں گے وتر ارض بارس اور دیکھو زمین کو صاف چٹیل زمین بالکل بیرن ہوگی بارس اور لینڈ جس کے اوپر کچھ نہ بالکل آپ جو اپنی زبان کہہ سکتے ہیں کہ نکلی ہوئی یا کھلی ہوئی جب ان کے اوپر سبزہ اگتا ہے زمین چھپ جاتی ہے نا تو بارزہ سوچ ابری ہوئی زمین جس کے اوپر سبزہ نہیں ہے مراد یہ خشک کون سا دن ہے قیامت کا دن وَحْشَرْنَا فَلَمْ نُغَادِ مِنْهُمْ أَحَدًا اور ہم سب کر لیں گے اپنے آپ کو سوچیں से किसी एक भी नहीं छोड़े, सब चले गए, कोई नहीं रहा वहां, और अल्लाह ताला सब को खत्म कर वहम फलम नवेर मिन हम आहद, और अल्लाह वहां सबको खड़ा कर रहा है, हम सबको जमा लेंगे, इनमें से किसी नहीं छोड़ेंगे। ये कौन है? आदम से लेकर आखिरी पैदा वाले इंसान तक। पहला मरहला, आगे क्या होगा? वह उरीद वाला रबी का सफा, तो पेश किए जाएंगे आपके रब के सामने सफे बांधे, ऑर्गेनाइज्ड, क्यामत के दिन सफे बनी होंगी, वहां दुनिया में ना बने। और क्या जाएगा? अच्छी ना खलक ना को वाला मर्रा, तब इनसे कहेगा आ गए हो ना रे पास, जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया। पहली मर्तबा क्या पैदा किया? हमें अरवाह रूहों की सूरत में। इंसान दुनिया में आता है तो उसके साथ मिलाप होता है, अल्लाह ताला क्यामत में दोबारा जिस्म देगा और पहले मिले आएगा। इसी से मुराद एक और बे जिस असल शक्ल में नंगे बरहना, जिस इंसान के खतने भी न हुए हों, जिस सूरत में बच्चा दुनिया में आता उसी सूरत में आएगा, जिसम कोई कपड़ा होगा। फिर अल्लाह उसे कहेगा वल तुम नजको माइदा, बल्कि तुमने तो यूं रखा था कि हमारे लिए वादे का कोई दी मुकर्रर नहीं है, तुम तो ये सोच बैठे थे कि हमसे मिलनी है, वही पीछे पड़ चुके हैं। अल्लाह लोग जिनको हमारी मुलाकात उम्मीद ही नहीं है, जिनके लिए दुनिया थी, जो जीते भी दुनिया के गम में थे, मरते भी दुनिया के गमों में थे, मरते भी दुनिया की बात हो, जब अल्लाह के सामने पेश गए तो कौन सा वादा माइदा कौन है? अलस्तु बिरब्बुकुम, सूरह आराफ 70। क्या तुमने मुझे अपना नहीं माना था? सबसे पहला देखा अल्लाह किस चीज का ले वादस्त, कि अपना मानते थे, बात सुनते थे। अब उसके बाद जिन का पटारा लेगा 89 वबूदी किताब, और दिया जाए नामया। ऐसे लगे कि किसान की जिंदगी की चल रही हो कि एक बड़ा सा कंप्यूटर है जिसमें सब डेटा सब है, और ला के दिख जाएगा। देखो आज दुनिया में एक छोटी चिप के अंदर तुम्हारी इतनी मात है तो अल्लाह मुश्किल होगा, पलक छपकने की देर लगेगी, हर एक प्रिंट आउट उसके हाथ में पहुंच जाएगा। ये नामे माल पता क्या? हमारे माल का प्रिंट आउट आज भी है, इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे कंधों पे। इसका प्रिंट आउट होगा कि कुल्ला इंसान उजम ना होता है, बस हैंड आउट किए जाएंगे हमें, असल में आज भी है कंप्यूटर, समझ रहे हैं? कंप्यूटर यूज करने हर चीजें हमारे कंप्यूटर दी है, उसमें जरूरत की दो चार चीज हम प्रिंट आउट हैं उसका, दैट्स इट। क्यामत ने अल्लाह को कोई नया इसी जोड़ना, सब आज डे टू डे अल्लाह हो रहा है, फाइल लगा हुआ है, ऑर्गेनाइज, एक सेकंड से भी पहले अल्लाह उसको ढूंढता है, और तो उसने उसका प्रिंट आउट पकड़ेगा और उसको पता ही जो तुम्हारा हाल फतौल मुजीना मुशफिकीन माफी। फिर तुम देखोगे कि बीमाओं को डर रहे हैं, किससे डर रहे होंगे? मत के दिल अल्लाह बड़ा बड़ा करके लिख ले में माफी, डरेंगे जो अमाले में दर्ज है, नहीं जुर्म से जुर्म डर, सारी जिंदगी खे हुए अंदाजात रहेगा, कहां पर यकून या वही लता माली हासला, और कह हाय हमारी शाम, ये कहना मैं आल ला युवादी अगीरत वला अगीरत ने ला हसा, इसने ना तो छोटी सी चीज को छोड़ ना किसी बड़ी को, बड़ी को मकसद महफूज किया है, किसी को आंख थी ना उसको नोट किया, किसी को थप्पड़ था चुटकी काटी थी लिखा हुआ, एक निशान लगाया था कि किताब पे वो भी लगा, और बड़ी बातें तो की हैं। वह वजह दो मिलो हादिम, और वो आएंगे जो भी उन्होंने किया होगा हाजिर मौजूद। वला इसलिए मोरू का है, और आप किसी पर को जुल्म नहीं करेंगे, हम तो सब रह सकते हैं, तो हमारे साथ जुल्म करेगा मत के दे, नहीं पॉसिबल। क्या दुनिया में कोई जरूरत है हमारे ऊपर डाटा कुछ और ला उसको चेंज करके है कुछ और बना दे कभी कोई? और याद रखिए कंप्यूटर में ये जो हमारा डाटा है ना, जब तक हम इसको लिख होते हैं ना कर रहे होते 3 साल ये वो अपी है चेंजेबल, उसके बाद ये बन जाता है, सिर्फ एक ही पानी पीडीएफ आता है और वो नदामत तौबा का पानी है। ओके बगैर मंगे तो एटी सेव है, बल्ला जाए उसके बंदे जाने क्या के दिन क्या होगा, लेकिन हम तसव्वुर में अपना नामल सोचे कि मैं सर आप एक कलमा बोलती हैं जिसमें छोटे छोटे खाने हैं और हर फोन के अंदर फाइल्स पड़ी हैं, और हर फाइल आपके नाम आल का एक हिस्सा, एक फाइल आपके माँ के नाम पे, आपका अपने माँ बाप का क्या ताल्लुक था, किस तरह उनके साथ बोलती थी, लम्हे अपनी माँ के आगे आई थी, किस लम्हे पाँव पटखा की बात सुन गए, एक खाना शौहर के नाम का खुला, शौहर के बारे में ख्याल थे, कितनी उसकी कदरदानी, कितना उसकी खिलती, एक पर्चा आपके एक नाम के एक बेटे के नाम, दूसरा दूसरे का, तीसरी बेटी का, आप अपना नाम देखना चाहें? इसके नाम का एक होल्डर है नंद के नाम, और ये तो अभी सिर्फ चार ईद के लोग हैं। जिंदगी की बिलोंगिंग हर चीज उसी के नाम एक होल्डर, इसी पे बैठ के क्या, डाइनिंग टेबल, सो कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन, हर नाम का आपका होल्डर, और आप उसको खो देख रही हैं। और जब काम है मुश्किल हमें भी इन चीज़ों से जान छुड़ा जल्दी करेगा, क्योंकि ये तो पकड़ा दी है। तो नेमत इन तेरा एक परचा, और जो फोल्ड आपने आप अपने का खोल लिया उसको देख मेरा अलग बेहोशी हो जाएंगे। जो अना के भूत बने बैठे उनको समझ गया, हमारी अकड़ तो देखे, मरल तो देखे, हमारी बात का अंदाज तो दिखे। इस अल्लाह तला आपको हमारे बाप उनके दुश्मन से मिला कि देखो जो तुम्हारा आपका दुश्मन था ना वही तुम्हारा दुश्मन है, इंशाल्लाह इसको रखेंगे।